જય ધવલા પુસ્તક 9 લેક્ચર નંબર 6 ઓ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાય
નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોયે સૌવસાઉરમ અણુભાગ ભાગમેતો વિજથ દોષસ્ય સંભવો નહિ તમ પણમિય જિનણાહમ
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण को देखते हुए अनुभाग संक्रमण का विषय चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 35। यह अभी हम उत्तर प्रकृतियों में अनुभाग संक्रमण की बात देख रहे थे। देखो, 5वीं पुस्तक में हमने अनुभाग विभक्ति देखी थी और अभी हम अनुभाग संक्रमण की बात कर रहे हैं, यानी कितने अनुभागों का संक्रमण होता है। संक्रमण से क्या समझना चाहिए? अपकर्षण,
उत्कर्षण
और उत्तर प्रकृतियों में पर प्रकृति रूप भी उसमें ले लेना। मूल प्रकृतियों में तो मात्र अपकर्षण उत्कर्षण लिया था। अब यहाँ उत्कृष्ट का स्वामी कौन है और जघन्य का स्वामी कौन है हम देख रहे थे। जरा फिर दोबारा देख लेते हैं। 30 पृष्ठ से शुरू हुआ था अपना विषय, वहां तो जघन्य की बात शुरू की थी हमने। पहले उत्कृष्ट का देख लेते हैं हम। तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम किसके होगा, याद है? नहीं, वो जघन्य की बात है। उत्कृष्ट
संगी पंचेंद्रिय,
संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव,
उत्कृष्ट बंद कर,
सर्वोत्कृष्ट संक्लेश वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद का कर बंद करता है। तो एक आवले के पश्चात उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रमण होता है, वो उसका स्वामित्व। उसके बाद अन्य जो कर्म है, कौन से अन्य कषाय, नौ कषाय, उसको भी ऐसा ही समझा था हमने। देखो ये बात आपको देखिए ना, जघन्य के पहले 27 से हमने बात देखना शुरू की थी। और अन्य कर्मों में भी ऐसा ही समझना चाहिए। उसमें अपवाद रूप कौन से? तो सम्यक और सम्यक मिथ्या। तो सम्यक और सम्यक मिथ्या तो उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? तो दर्शन मुनि की क्षपणा को छोड़ दो,
बाकी सभी
तो बाकी सभी का उसको उत्कृष्ट अनुभाग होता है। अभी संक्रमण के लिए वो उद्वेलना वाला एक अवली छोड़ देना, क्योंकि वहाँ संक्रमण नहीं है, फिर भी वहाँ अनुभाग जो है वो तो उत्कृष्ट ही है। संक्रमण रुक गया है, परंतु अनुभाग विभक्ति में उसको भी ले लेंगे। ये तो उत्कृष्ट की बात हुई। अब जघन्य की मिथ्यात्व का, जघन्य का स्वामी कौन है?
सूक्ष्म
एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्त, वो कैसे है? तो हत समुत्पत्ति वाला, उसका बंध उससे भी कम है, परंतु सत्ता में जब तक अधिक अनुभाग पड़ा है तो कितना भी कम बंध क्यों ना हो, तो उसका जितना सत्ता में है उसमें से अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ है वो यथायोग्य चलेगा। इसलिए सत्व की अपेक्षा या संक्रमण की अपेक्षा जघन्य में जघन्य कितना होता है, तो घात के द्वारा जितना होता है उतना ही होता है। इसको कहेंगे हत समुत्पत्ति के, नहीं कितना अनुभाग घात करके जो शेष बच गया है उसको हम कहते हैं हत समुत्पत्ति, यानी घात के द्वारा उसने उतना अनुभाग बना दिया है। अब उसका नया बंध उससे भी कम हो रहा है, तो क्या हुआ? अनुभाग जब सत्ता में अधिक पड़ा है तो उसी को काउंट करेंगे हम। तो जो घात की अपेक्षा जघन्य है उसी को यहाँ जघन्य अनुभाग संक्रमण को हम कहेंगे, वही जीव है। और वो कौन है? तो सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धीय पर्याप्त। तो पर्याप्तकों के या बादर जीवों के तो अधिक विशुद्धि होती है, परंतु उसको नहीं लिया क्योंकि घात के द्वारा जो जघन्य है वो उससे इसमें ज्यादा है, और उसका कारण कहा जाति विशेष से होता है, यानी ये अधिक घात करता है अपर्याप्त को। सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त निगोद को ही लिया। तो उसमें तो ये हो गई मिथ्यात्व की जघन्य की बात। ऐसा ही जो जीव है जिसने जघन्य कर दिया है और मरकर अन्य पर्याय में उत्पन्न होगा तो उसको भी हम जघन्य कहेंगे। अब अन्य कर्मों की बात। तो जो आठ कषाय है, कौन से आठ कषाय?
अप्रत्याख्यान
बीच वाले। क्यों उसको लिया?
उसके क्योंकि उसका जघन्य
और उसकी जो क्षपणा होती है वो अंतरकरण के पहले होती है, और अंतरकरण के पहले है तो वहाँ तो अधिक अनुभाग पड़ा है, जैसे स्थिति ज्यादा है वैसे अनुभाग भी वहाँ पर ज्यादा है। और जो बाद में जो क्षपणा होती है उनका अपना क्षपणा के काल में होता है तो उनका अनुभाग उस मात्रा से कम है, तो वहाँ जितना अनुभाग है उससे भी सूक्ष्म एकेंद्रियों का अनुभाग अनंतवे भाग प्रमाण है। इसलिए आठ कषायों में और मिथ्यात्व में क्षपणा के समय जघन्य अनुभाग नहीं कहते हुए सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त एकेंद्रिय में उसको कह दिया घात अपेक्षा जघन्य। सम्यक्त्व का जघन्य कब होता है? सम्यक प्रकृति का क्षपणा में, दर्शन होने की क्षपणा में,
एक समय प्लस एक।
क्योंकि पहले तो क्या होता था, वो अनुभाग कांडक करते करते पहले जब तक सत्ता थी, जब तक क्षपणा शुरू नहीं की थी तो थ्रू आउट उसका उत्कृष्ट ही था। भले उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, दो बार छासर सागर तक समय दृष्टि रहा, कुछ भी किया तो उसका उत्कृष्ट ही अनुभाग था। अब जब दर्शन मुनि की क्षपणा शुरू हुई तब जाके उसका उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ। फिर भी फिर पहले मिथ्यात्व का संक्रमण होगा, फिर समय मिथ्यात्व होगा, फिर आठ वर्ष प्रमाण स्थिति रहेगी, उसके बाद वो उसका घटते 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 जब लास्ट कांडघात के बाद भी वहाँ कुछ अंतर्मूर्त प्रमाण शेष रहेंगे तो वहां भी प्रति समय अनुभाग घटेगा। तो इसलिए आवली के ऊपर एक समय जब बाकी है तो वहां उसका जघन्य में जघन्य अनुभाग संक्रमण होगा। अनुभाग विभक्ति यानी सत्ता में अनुभाग की बात की थी तो जघन्य जो कहा था वो कृतकृत्य वेदक के अंतिम समय में कहा अनुभाग सत्ता के अनुभाग की अपेक्षा, यहाँ हमें संक्रमण की अपेक्षा लगानी, इसलिए आवली प्लस एक समय लिया। अवली में प्रवेश कर चुकते हैं तो वहाँ
संक्रमण
रुक जाता है। ये अवली जब कहेंगे तो वहाँ निषेकों की अपेक्षा लेना, उन निषेकों में जो स्पर्धक है उसकी बात है ख्याल में, परंतु स्पर्धकों का कितने का, सभी स्पर्धकों में से उसका संक्रमण होगा नीचे के स्पर्धक तक को। अभी उसमें यथायोग्य निक्षेप और अतिस्थापना छोड़ने के जो नियम देखे थे वो तो है ही, वहां पर भी काम कायम है। ये तो हमने सम्यक्त्व का देखा। सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रम करने वाला कौन है?
अंतिम कांडक।
हाँ, जब क्षपणा में अंतिम अनुभाग कांडक जो होता है उसका संक्रमण जब होता है, अंतिम फाली का जब संक्रमण होता है तब, क्योंकि उसके बाद तो अवली प्रमाण रहते हैं और तभी उसका अनुभाग संक्रमण नहीं होगा। अनंतानुबंधियों में जघन्य कौन है?
संयोजना के पश्चात।
तो संयोजना करते ही जो बंद हुआ वो तो मिनिमम जघन्य अनुभाग वाला है, विसंयोजना में भी इतना अनुभाग कम नहीं होता है क्योंकि वहाँ का जो अनुभाग है वो सारे पूर्वबद्ध है, और यहाँ का जो है विसंयोजना के बाद अभी मिथ्यात्व में आया है, पहले समय में जो अनुभाग बंधा है वो मिनिमम पॉसिबल है। स्थिति विभक्ति सॉरी अनुभाग विभक्ति में तो उसी को हम कहेंगे पहला समय, परंतु संक्रमण में आवली के पश्चात उसका वो जो बंधे हुए जघन्य का संक्रमण होता है। तो जघन्य संक्रमण वाला कौन है? तो आवली वाला, आवली के पश्चात वाला। विसंयोजना के बाद संयोजना की तो जघन्य बंध किया, अब वो जो वहां बंधा है वो आवली के पश्चात उसका संक्रमण होगा। वहां ये भी प्रश्न पूछा गया था कि उसी समय जिस समय संयोजना होती है तो जो हमने प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप हुए थे वो वापस अनंतानुबंधी रूप से टर्न होते हैं, तो उसका अनुभव तो ज्यादा है क्योंकि उसमें तो कुछ विसंयोजना कुछ नहीं हुई थी, तो यहाँ उसका भी अनुभव होगा, तो ये जघन्य कैसे रहा, ये भी अधिक हो जाएगा और जघन्य हो जाएगा। तो कहते हैं बंधवाना जो अनुभव है, संक्रमण जो होता है, तो बंधते समय जो अभी नया जो बंध हो रहा है उसका जितना अनुभव है उस रूप वो संक्रमित होता है। ख्याल में, जिस परिणाम से अभी हम जघन्य बंध हो रहा है अनुभव का, उसी परिणाम से जो अन्य कषाय अनंतानुबंधी में टर्न हो रहे हैं उसका अनुभाग भी कितना बन जाता है, जितना बंधने वाले का होता है, ऐसा नियम है, इसलिए वो जघन्य ही रहा। सम्यक मिथ्यात्व का वहाँ तो बनती ही नहीं है। हाँ, दर्शन मोहनी, हाँ ये प्रकृति तैयार हुई,
हाँ
हाँ, ये दोनों का ही अनुभव उत्कृष्ट रहता है। हाँ वही तो बताया ना, जब दर्शन मोहनी की क्षपना शुरू हो गई तब उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हो गया है, और वहाँ बहुत सारे अनुभव कांड घात हो रहे हैं, और तब उसका जघन्य तक चला आया है, डायरेक्ट उत्कृष्ट में से जघन्य नहीं हुआ है। पहले उत्कृष्ट था, जब दर्शन मोनी संबंधी जो वहाँ तीन करण परिणाम हो गए तो वहाँ अपूर्व करण से ही उसमें अनुभाग कांडक घात शुरू हो जाते हैं, तो पहला अनुभाग कांडक घात जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक तो उसका उत्कृष्ट ही रहेगा, जब पहले अनुभाग कांडक की अंतिम फाली गिर गई तो अनुत्कृष्ट हुआ, अनुत्कृष्ट हुआ, जघन्य नहीं हुआ, फिर दूसरे कांडक में और घट गया, तीसरे कांडक में और घट गया, तो ऐसे हजारों हजारों कांडक होते रहते हैं।
लास्ट कांडक
एक स्थिति कांडक घात होता है, उतने काल में हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं, तो वो घटते 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 अंतिम कांडक में उसका जघन्य हो गया। समय मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति के लिए अंतिम कांडक नहीं कहा, क्योंकि अंतिम कांडक का घात होने पर भी अंतर्मूल प्रमाण वहाँ निषेक बाकी है, और उसमें जो स्पर्धक है वहाँ उसका भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुणाहीन हो रहा है, कांडक जैसा नहीं, प्रति समय, तो इसलिए जो अंतिम समय है उसका आवली के ऊपर का, तब उसका अनुभाग का जघन्य में जघन्य अनुभाग भी है, उसका संक्रमण हो रहा है, ये तो बात हमने देखी थी। हाँ, सम्यक प्रकृति का अंतिम कांडक हो गया, जो अंतिम स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक रुक गए हैं, तब अंतर्मूर्त प्रमाण शेष रहा, जिसको हम कृतकृत्य वेदक कहते हैं, वो तो अंतर्मूर्त है, आवली से बहुत ज्यादा है, और अभी कांडक रुक गए हैं, कांडक रुक रहे परंतु प्रति समय अनुभाग घट रहा है, कांडक के लिए एक अंतर्मूर्त लगता था, अब प्रति समय अनुभाग घट रहा है, जितना है उसका अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग हो रहा है, इसलिए उसका संक्रमण भी उस प्रमाण से घटेगा, ये तो हमने देख लिया था। उसके बाद हम
क्रोध
संज्वलन की बात उठा रहे, तो क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रमण का स्वामी कौन है, तो वहां भी जो क्रोध वेदक काल, देखो जब श्रेणी चढ़ता है जीव, अभिक्षेपक की बात चल रही है अपनी, तो उसके पहले में पहले वेद का भी उदय और संज्वलन किसी एक का भी उदय चल रहा है, अभी हम क्रोध का उदय की बात उठाएंगे, तो पहले वेद का उदय है, तो वेद भी बन रहा है और क्रोध मान माया लोक चार भी बन रहे, पांच का बंद है, वेद का उदय मिट गया तो अभी क्या बन रहा है, क्रोध मान माया लोक, तो जब तक चारों ही बन रहे हैं तब हम कहेंगे ये क्रोध वेदक काल है, परंतु वहां उदय तो क्रोध का भी हो सकता है, मान का, माया का, लोभ का, किसी का भी हो सकता है, अब वो वहां जहां तक क्रोध का उदय हो सकता है उस पॉइंट को वहां चार का बंध है, उसके ऊपर मान माया लोभ तीन का बंध है, तो उसको अंतर्मूर्त तक हम कहेंगे मान वेदक काल, फिर माया वेदक काल, उसका नाम ही माया वेदक काल या मान वेदक काल या क्रोध वेदक काल। तो क्रोध वेदक काल के अंतिम समय में क्या हुआ, वहाँ नया बंध भी हो रहा है ना, जब तक क्रोध का उदय चल रहा है उसका बंध भी हो रहा है, ये क्रोध का बंध होने का अंतिम पॉइंट है। जहाँ स्थिति की अपेक्षा हमने देखा कि 2 महीने का बंध होता है, वैसे अनुभाग भी वहाँ जघन्य में जघन्य बंधा, ये जघन्य अनुभाग वाला नवक बंध है, नवक समय प्रबंध। पूर्व में जो थे जघन्य वाले भी उसमें भी अनंत होते हैं, क्योंकि हर एक स्पर्धक ही अनंत हुआ, उसका मिनिमम वाले उसकी, परंतु ये कैसा रूप बंधा है,
कृष्टि,
हाँ कृष्टि रूप से बंधा है, यानी अत्यंत हीन अनुभाग रूप से बंधा है। तो पूर्व अवस्था के जितना अनुभाग वाले वहाँ परमाणु थे वो सब मान रूप होकर निकल गए, यानी मान रूप हो गए हैं, उदय होकर खिर नहीं गए पूरे के पूरे, जो सत्ता में थे वे सारे मान रूप टर्न हो गए। अभी बचा है ये नवक समय प्रबंध, आवली के पश्चात उसका संक्रमण होकर वो भी नष्ट होता है, तो उसमें वहाँ भी अनुभाग संक्रमण भी चल रहा है, पर प्रकृति रूप भी हो रहा है उसका अनुभाग, अपना जो कुछ छीन होना है वो भी हो रहा है, तो उसका पहला फाली दूसरा तीसरा चौथा करके वो सारा नष्ट होगा। तो वहाँ इसका जघन्य में जघन्य अनुभाग है, क्रोध की बात करें। देखो हम इसको फिर पढ़ेंगे 35 पृष्ठ पर, नीचे से जो 92 नंबर का पैराग्राफ है, क्रोध वेदक शपक का जो अंतिम अनुभाग बंद है, बंद की बात है, क्रोध वेदक के अंतिम समय में इसका बंद हुआ है, उसकी यहाँ चरम अनुभाग बंद संज्ञा है, परंतु वह कृष्टि स्वरूप है। कृष्टि का अर्थ है अनुभाग अत्यंत मंद है, क्योंकि पहले पूर्व अवस्थाओं में नीचे के गुणस्थानों में या मुनिराजों को भी ये जो बंद होता था, तो वहाँ तो पूर्व स्पर्धक यानी रेगुलर स्पर्धक थे, सबसे नीचे के स्पर्धक में जितना अनुभाग था उसके भी अनंतवा भाग ऐसे नए नए अपूर्व स्पर्धक बने, अपूर्व स्पर्धक के बाद भी कृष्टि हुई उसकी, और कृष्टियों में भी नीचे नीचे और कृष्टियां बनती रही प्रति समय, पूर्व कृष्टि और फिर अपूर्व कृष्टि, इस तरह से वहाँ संग्रह कृष्टियां बनती है, कृष्टियों के समूह को संग्रह कृष्टि कहते हैं। जो क्रोध के वेद के उदय सहित चढ़ता है उसकी क्रोध की 3 संग्रह कृष्टि, मान की 3, माया की 3, लोभ की 3 हो जाती है, और उसका ये प्रोसेस जल्दी शुरू होता है कृष्टि वाला, यानी क्रोध की कृष्टि हो गई उसके भी 3 हो गई, तो उसमें बहुत सारा कम हो गया और उसका नया बंध भी कृष्टि रूप से हुआ है, तब जाके इसका जघन्य मिलेगा। अब हर एक कषाय के उदय के साथ चढ़ने वाले की बात अलग अलग है, जो मान के उदय के साथ चढ़ता है उसका जो क्रोध की क्षपण है ना, क्रोध को मान रूप टर्न हुआ, वो और थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो उस कारण वहाँ उसका जो अनुभाग है क्रोध का वो ज्यादा होता है। क्रोध के उदय के सही चढ़ने वाले के मिनिमम पॉसिबल है, परंतु मान माया लोभ के उदय के साथ चढ़ने वाले के इतना जघन्य पाया नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ कहेंगे स्व उदय से चढ़ने वाला जीव, जो मान के उदय के सही चढ़ता है उसमें तो मान माया लोभ 3, 3, 3, 9 ही कृष्टियां संग्रह कृष्टि बनती, क्रोध के उदय से चढ़ने वाले के 12 हुई थी, जो माया के उदय से शुरू से ही जो माया के उदय से ही चढ़ेगा उसकी माया की 3 और लोभ की 3 6 ही होगी, यानी उसके प्रोसेसेस हर एक के अलग अलग है। जो हम जब छपना का विषय चलेगा तब उसकी चर्चा अधिक विस्तार से होगी। तो यहाँ भी हम ये पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते, कल हमने पढ़ा था, क्रोध वेदक शपक का जो अंतिम अनुभाग बंध है उसकी यहाँ चरम अनुभाग बंध संज्ञा है, परंतु वह कृष्टि स्वरूप है, क्योंकि क्रोध की तीसरी कृष्टि के वेदक जीव के द्वारा, तीसरी ऊपर की उसको पहली कृष्टि कहेंगे यानी कृष्टियों का समूह, फिर उसके नीचे दूसरी संग्रह कृष्टि है, उसके नीचे तीसरी है, तो पहले वाले का अनुभाग ज़्यादा है तो शुरू में पहले वाले का उदय चलेगा, वो मिट जाएगा तो दूसरी वाला शुरू होगा, वो मिटेगा तो तीसरी वाला शुरू होगा। तो तीसरी कृष्टि के वेदक जीव के द्वारा वह निवृत्त हुआ है, निवृत्त यानी तैयार हुआ है, क्योंकि वहाँ इतने मंद परिणाम है कि यहाँ जो नया बंध हो रहा है वो कृष्टि स्वरूप है। उसको अंतिम अनुभाग बंध का अंतिम समयवर्ती अनिर्लेप कैसा कहने पर, क्या कहते हैं, जो अंतिम अनुभाग बंध किया है उसका अनिर्लेपक, एक आवली के बाद उसका निर्लेपन शुरू होता है ना, वो उसका उदय होकर खिर जाता है या संक्रमण होकर मिट जाता है, तो उसको निर्लेपक कहेंगे। परंतु वो पूरा निर्लेपन होने के एक समय पूर्व की अवस्था, उसको कहेंगे अनिर्लेपक, क्योंकि अंतिम समयवर्ती अनिर्लेपक, यानी यहाँ क्रोध की सत्ता वाला वो अंतिम समय है। क्यों सत्ता वाला कहा, क्योंकि अभी सारे के सारे जितने हैं, निषेक रचना कितनी है, तो अंतर्मूर्त कम 2 महीने, अभी हम इसमें स्थिति की बात नहीं उठा रहे हैं, अनुभाग की। तो जितने निषेक है उसमें जितना अनुभाग है, एक फाली, दो फाली, तीन फाली, जब अंतिम समय में क्या होगा, वो सारा का सारा अनुभाग टर्न हो गए, पर प्रकृति रूपी हो जाने वाला है, उस समय उसको कहेंगे अंतिम समयवर्ती अनिर्लेपक। तो वो कब होता है, तो मान वेदक काल के 2 समय कम 2 आवली काल के अंतिम समय। पहली आवली में तो ये बंधावली हो गई इसकी, और बाद में उसकी संक्रमण आवली चल रही है, और वो 2 समय कम 2 आवली उसका लास्ट पॉइंट है, जब वो क्रोध की सत्ता मिटने वाली है, माया मान रूप होने वाली, तो वो जीव लेना चाहिए। और उसको यहाँ जघन्य का स्वामी कहा, क्रोध के जघन्य अनुभाग का स्वामी कौन है, तो ये जीव। यहाँ पर सूत्र में यद्यपि स्वोदय से स्वामित्व होता है ऐसा विशेषण लगाकर नहीं कहा है, सूत्र में वो स्वोदय की बात नहीं उठाई है, अभी हमने स्वोदय की चर्चा की ना, स्वोदय ने क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाला जीव, तो भी यहाँ पर स्वोदय से स्वामित्व को ग्रहण करना चाहिए, वो स्वो हुआ है, स्वो करना, इसका अर्थ ख्याल में आता है, स्वोदय का
क्रोध के उदय,
क्रोध के ही उदय से ही तो क्षपक श्रेणी चल रहा है, क्योंकि शेष कषायन के उदय से चढ़े हुए क्षपक के क्रोध संयुलन का अनुभाग स्पर्धक रूप से ही निर्लेपन को प्राप्त होता है। क्या कहा,
स्पर्धक रूप से,
स्पर्धक, क्योंकि पूर्व अवस्था में स्पर्धक थे, उसके बाद उसके कृष्टि बनी है, तो ये यदि वो मान या माया या लोभ के साथ चढ़ता
तो स्पर्धक से,
तो स्पर्धक रूप था, तभी उसका
संक्रमण
हो जाता, क्योंकि अन्य कषाय से चढ़ने वाले का अलग अलग पॉइंट पर उसकी जो क्षपणा का कार्य होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, अश्वकर्ण वगैरह, तो ये बात क्रोध वाले के जल्दी होते उसके 3 संग्रह कृष्टियां होती, मान सहित चढ़ने वाले के क्रोध की वो कृष्टियां होगी ही नहीं, डायरेक्ट उसका संक्रमण होगा स्पर्धक अवस्था में ही, इसलिए कहते हैं अन्य कषाय के उदय से चढ़े हुए क्षपक के क्रोध संज्वलन का अनुभाग स्पर्धक रूप से ही निर्लेपन को प्राप्त होता है, यानी स्पर्धक रूप है, अभी उसका अनुभाग अधिक होते हुए ही वो मान रूप टर्न हो जाता है, इसलिए उसमें जघन्यपना नहीं बनता, हमें जघन्य का स्वामी देखना है। तो क्रोध के उदय से चढ़ने वाले के
अंतिम दृष्टि
जो नवक समय प्रबद्ध है, अंतिम समय वाला नवक समय प्रबद्ध, उसके जब क्षपणा होती है, संक्रमण होता है, उसका अंतिम पॉइंट लेना, तब वो जघन्य में जघन्य अनुभाग पाएगा। ये तो कल तक की बात हुई, अब आगे बढ़ेंगे। क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले के क्रोध की कृष्टि बनती है, परंतु मान के उदय से ही चढ़ने वाले के क्रोध की कृष्टि बनती नहीं है, वो स्पर्धक अवस्था में ही संक्रमित होता है। अब कहते एवं मान माया संज्वलन पुरिस वेदानम, इसी प्रकार मान संज्वलन, माया संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। अभी यहाँ लोभ को नहीं लिया है, जिसको लिया है उसकी बात पहले देखेंगे अभी हम, क्योंकि शपक संबंधी अंतिम अनुभाग बंध का अंतिम समय में निर्लेपन करने वाले जीव के जघन्य अनुभाग संक्रम होता है। यहाँ भी ऐसा ही लेना है,
मान के लिए, मान के
मान का जो अंतिम समय का बंध है, तो मान के उदय सहित या क्रोध के उदय सहित कहेंगे, क्यों क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाला भी
मान का उदय हो ही
जाए, वो क्रोध का वेदक काल समाप्त होने पर मान का उदय रूप टर्न होता है, तो उसमें भी वो जघन्य पाया जाएगा। परंतु माया और लोभ के उदय से ही चढ़ने वाले को ये नहीं पाया जाएगा कि शुरू से ही वो उसी कषाय से चढ़ते हैं। देखो फिर क्रोध के उदय से ही चढ़ता है ना वो, तो उसका टाइम आने पर मान का उदय होता है, फिर माया का उदय होता है, फिर लोभ का उदय होता है, क्रम से। जो मान सहित ही चढ़ता है तो उसके पहले दो अंतर्मूर्त तक मान का ही उदय होगा, बाद में माया का और लोभ का होगा। जो माया के उदय से ही चढ़ता है वो पहले तीन अंतर्मूर्त में माया का ही उदय रहेगा, बाद में लोभ का हो जाएगा। और जो लोभ के उदय से ही चढ़ता है वो शुरू से ही लोभ का ही थ्रूआउट उसका उदय रहता है। केवल वहां बंध में फर्क पड़ेगा, पहले चारों का बंध, फिर तीन का बंध, फिर दो का बंध, फिर लोभ का बंध। इसलिए यहां कहते हैं, अभी हम मान और माया की बात चल रही है ना, मान माया और पुरुष वेद, तो यहाँ मान के जो अंतिम समय प्रबद्ध बंधा है उसका जब संक्रमण होता है तब उसका जघन्य। माया के बारे में भी ऐसा ही समझना, पुरुष वेद के बारे में भी ऐसा ही समझना, वो भी पुरुष वेद के उदय से ही चढ़ने वाले जीव के जो अंतिम समय में बंधा है। यहाँ कृष्टि नहीं कहलाएगी, परंतु उसका अनुभाग जघन्य है वहां
अंतिम समय में बंधे हुए का।
अंतिम समय में बंधे हुए तो स्त्री वेद के सही चढ़ने वाले के पुरुष वेद का जघन्य होगा कि नहीं होगा?
नहीं
होगा, क्योंकि स्त्री वेद के उदय से चढ़ने वाले के वेद का उदय जल्दी मिट जाता है
और बंद भी,
और वहां पर जो अंतिम बंद है वो छह नौ कषाय के साथ उसका संक्रमण भी हो जाता है, यानी उसके संक्रमण का जो अंतिम पॉइंट है वहां पर उसका अनुभाग ज्यादा है। परंतु जो पुरुष वेद सही चढ़ा है तो और एक अंतर्मूर्त जाके उसका उदय मिटता है,
और
तो वहां पर जो बंध होगा तो और जघन्य अनुभाग वाला होगा, और उसका अनुभाग बाद में एक आवली के बाद टर्न होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी दो समय कम दो आवली में उसका अंतिम पॉइंट आएगा, तो उसका मिनिमम पॉसिबल जघन्य उसका अनुभाग पाएगा। ये जैसे हमने क्रोध में देखा, क्रोध मान माया और पुरुष वेद में ऐसा ही समझना। अब लोभ संज्वलन की बात करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे ऊपर, क्योंकि क्षपक संबंधी अंतिम अनुभाग बंध का अंतिम समय में निर्लेपन करने वाले जीव के जघन्य अनुभाग संक्रमण होता है, इस अपेक्षा से क्रोध संज्वलन से यहाँ कोई विशेषता नहीं है। इतनी विशेषता है कि क्रोध या मान के उदय से चढ़े हुए जीव के मान संज्वलन का, इसका अर्थ समझ में आए? जब हमने क्रोध का जघन्य है तो क्रोध के उदय से ही जीव लिया, मान के जघन्य में मान के उदय सहित या क्रोध के उदय से, क्योंकि बाद में क्रोध वाला भी मान रूपी हो जाता है, इसलिए उसके उदय से। और माया के अगर हमको जघन्य लेना है तो क्रोध मान और माया इन तीन में से किसी एक के उदय से ही चढ़े हुए जीव के माया संज्वलन का जघन्य स्वामित्व होता है। ये क्या कहना चाहते, ख्याल में आई बात? क्रोध का जघन्य किसके है? क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले के। मान का जघन्य किसके है? क्रोध या मान के उदय से चढ़ने वाले। माया का जघन्य किसके है? क्रोध मान या माया के उदय से ही चढ़ने वाले। वहां लोभ को नहीं लिया। अब लोभ की बात आप बताएंगे। लोह संजलन से जघन्य अनुभाग संकामो को होई। लोभ संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम। ये तो प्रश्न है, तो ये तो समझ में आ गए। तो उसका उत्तर कहते हैं, समया ही आवलिय चरिम समय स कसाओ खवगो। खवगो एने क्षपक, स कसाओ एने
कसाई सहित,
कसाई सहित एने सूक्ष्म सांप्रय वाला। और कैसा है?
एक समय अधिक एक आवली,
समय अहिय आवलिय चरिम समय, यानी समय अधिक आवली, आवली प्लस एक समय वाला। और ऐसा चरम समय वाला सूक्ष्म सांप्रदाय। अभी हम उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। एक समय अधिक आवली काल के रहने पर अंतिम समयवर्ती संक्रामक शपक। अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदाय नहीं लिया, अंतिम समयवर्ती संक्रामक लिया, क्योंकि अंतिम समय लेते तो वहां अनुभाग की अपेक्षा, अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा तो जगन्य बन जाता, परंतु वहां संक्रमण नहीं है। तो अंतिम समयवर्ती संक्रामक कौन है? तो एक
समय प्लस
एक समय पहले आ जाओ शपक जीव। अंतिम समयवर्ती शपक कहा, परंतु यहां समया या अवलिय चरिम समय स कसा हो लेना है। सकसा एक शपक चाहिए, यानी सूक्ष्म सांप्रदाय शपक चाहिए। देखा ना, एक समय अधिक आवली काल के रहने पर अंतिम समयवर्ती संक्रामक शपक जीव। यहाँ सूक्ष्म सांप्रदाय की बात नहीं आई है, संक्रामक के बाद सूक्ष्म सांप्रदाय शब्द है। सकसाय वाला है ना, सकसाय शपक यानी कौन है? वो सूक्ष्म सांप्रदाय वाला। उसी को ऊपर सकसाय कहा था। सूक्ष्म सांप्रदाय वह जीव लोभ संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। शंका, यहां पर जघन्यपना कैसे है? प्रश्न चिन्ह करना। उसका समाधान, नहीं, नह हुआ नहीं, हाँ अस्पष्ट है, क्योंकि सूक्ष्म कृष्टि की उत्तरोत्तर प्रति समय अनंत गुणहानि स्वरूप से अंतर्मूर्त काल तक अपवर्तना होने के कारण वहां पर अत्यंत जघन्य रूप से संक्रम प्राप्त हो जाता है। इसको देखेंगे अभी हम। नवे गुणस्थान में जो अभी हम देखते थे कि जब लोभ वेदक काल शुरू हुआ है अंतिम, तो पहले तो कृष्टियां थी ही, वो तो बादर कृष्टि थी, संग्रह कृष्टि इतनी बनी थी, उसमें से क्या होता है अभी
सूक्ष्म कृष्टि,
उदय तो चल रहा है बादर कृष्टि का, और सत्ता में जो पड़े हैं उसकी सूक्ष्म कृष्टि करने का कार्य चलता है नवे के अंत तक। दसवें गुणस्थान में क्या होता है? उस सूक्ष्म कृष्टि का उदय शुरू होता है। तो उदय रूप है वो, तो उसका जिस अनुभाग से वो उदय शुरू हो जाता है, परंतु अभी भी सत्ता में जितने पड़े हैं उसका अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता चला जाता है, और वो घटता हुआ ही उदय में भी आता रहता है। यानी दसवें गुणस्थान का जो अंतर्मूर्त काल है उसके पहले समय में जितना अनुभाग है, दूसरे समय में वो अनंत गुना घट गया, तीसरे समय में अनंत गुना घट गया, चौथे समय अनंत गुना घट गया, तो कहाँ तक चलेगा? वैसे तो अंतिम समय तक चलेगा, परंतु हमें तो संक्रमण से मतलब है, इसलिए उसके आवली प्लस एक समय जब बाकी है उस समय उसका अनुभाग संक्रमण जघन्य है। केवल ऐसा पूछते ना, लोभ का अनुभाग जघन्य कहाँ पर है? तो सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम समय में कह देते हैं, परंतु अंतिम आवली में उसका संक्रमण नहीं है,
एक समय प्लस,
इसलिए वह एक समय पूर्व बताया। ख्याल में आई ये बात? नहीं, तीसरी बादर कृष्टि तक जाता ही नहीं जीव, तीसरी को दसवें में आता है, तीसरी कृष्टि में से सूक्ष्म कृष्टि हो गई है, और वो सूक्ष्म कृष्टि का भी और संक्रमण चल रहा है, उसमें भी यानी अपवर्तन होता है ना, उसका भी अनुभाग घट रहा है, उसमें भी हम कृष्टि कहेंगे, उसको स्पर्धक नहीं कहते। पहले हम क्या कहें, ऊपर के स्पर्धकों का अनुभाग घट गया, अभी ऊपर के कृष्टियों का घट गया यानी क्या, और नीचे नीचे वो उससे जघन्य 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 और बनती चली जाए। तीसरी कृष्टि का उदय हुआ ही नहीं, वो जब तक दूसरी कृष्टि में था तभी उसने जो सत्ता में पड़े उसको सूक्ष्म कर दिया। यानी जब दसवें में आया है और सूक्ष्म कृष्टि का उदय चल रहा है और प्रति समय उसको और सूक्ष्म सूक्ष्म बना रहने और उसका अनुभव घट रहा है। अब आगे इथिवेदस्य जघन्य अनुभाग संक्रामो को हुई, स्त्रीवेद के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। कहते इथिवेदक खवगो तस्सेव चरिम अनुभाग खंडये वट्टमानो, उसी के अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान, उसी के नहीं स्त्रीवेद के, स्त्रीवेद का जब अंतिम अनुभाग कांडक चल रहा है, ऐसे स्त्रीवेदी क्षपक जीव, पुरुषवेदी या नपुसक वेदी नहीं लिया, स्त्रीवेद वाला ही लिया है, स्त्रीवेद के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। यदि कोई ऐसी आशंका करे, यहाँ पर स्त्रीवेद विशेषण निरर्थक है, क्योंकि परोदय से भी स्वामित्व का विधान करने पर कोई विरोध नहीं आता। यहाँ स्त्रीवेदी क्यों डाला, पुरुषवेद से ही चढ़ने वाला, नपुसक वेद से ही चढ़ने वाले को भी ले लो ना, तो उसकी ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उदाहरण दिखलाने के लिए यह कथन किया है। उदाहरण दिखाने के लिए ने स्त्रीवेद का जघन्य स्त्रीवेद से ही चढ़ने वाले को होगा, पुरुषवेद का जघन्य पुरुषवेद से ही चढ़ने वाले, हमने पहले देखा ही था, और नपुसक वेद का जघन्य नपुसक वेद से ही चढ़ने वाले को होगा। अभी जरा निकाल लेते हैं, अनुभाग सत्कर्म किसको होता है, देखो 172 पृष्ठ है, मिल गया था वर्दो, पुस्तक पांचवी, पेज 172, देखो मैं पढ़ती हूँ, आपके पास होगा पुस्तक तो देख लेना, नहीं होगा तो सुनना। वहां तो सत्कर्म की बात थी और यहां हम संक्रमण की बात कर रहे हैं। तो स्त्रीवेद का जघन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है, ऐसा प्रश्न पूछा था, तो कहा था कि अंतिम समयवर्ती क्षपक स्त्रीवेदी जीव के होता है, अंतिम समय लिया और यह अंतिम अनुभाग कांडक लिया, कि अनुभाग कांडक में थ्रू आउट उतना ही होगा उसका, और यहां पर समय लिया है, एक ही बात है। जो स्त्रीवेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा है और जिसने अंतरकरण करके अंतर्मूर्त काल के द्वारा पुरुष वेद में नपुसक वेद का संक्रम किया है, अपनी भाषा में नपुसक वेद की क्षपना पूरी हुई, श्रीवेद सही चढ़ने वाला पहले क्या करता है, अंतरकरण होने के पश्चात पहले में पहले नपुसक वेद का संक्रमण पूर्ण करता है, यानी उसका क्षय हो गया, तथा सवेद भाग के उपांत्य समय में स्त्रीवेद की द्वितीय स्थिति को ग्रहण कर आगे के समय में उसे निस्सत्व कर दिया है। द्वितीय स्थिति में जितना है स्त्रीवेद का पड़ा हुआ वो सारा पुरुषवेद रूप से संक्रमित हो गया, और जिसके स्त्रीवेद का केवल उदय प्राप्त गोपुच्छ बाकी रहा है, इसमें दो मत है, ये उदय प्राप्त एक गोपुच्छ इसमें रहती है, उसके पहले उसका बाकी संक्रमण हो जाता है, यानी उसकी एक ही निषेक बाकी है, गोपुच्छ यानी निषेक, इसमें पहले स्थिति में जो उदय रूप है बाकी सारा उसका गल गया, यानी पहली स्थिति में तो सारा गल गया है और ऊपर की स्थिति में वो सारा संक्रमित होकर पुरुष वेद रूप हो गया, उसके स्त्रीवेद का जघन्य अनुभाग सत्कर्म होता है। इस अनुभाग विभक्ति यानी सत्कर्म सत्ता की अपेक्षा बात है, क्योंकि उसके देशघाती एक स्थानिक स्पर्धक होते हैं। अब ये तो एक समय को लिया, जब उदयावली प्रमाण शेष रहते हैं प्रथम स्थिति में तो एक 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 निषेक गल जाएगा, और उसके यहाँ अंतिम निषेक की बात है, उसमें अंतिम अनुभव की बात है, हम अभी बात करें संक्रमण की, तो संक्रमण तो बाद में संक्रमण रुक जाता है, आवली प्रमाण शेष रहे तो संक्रमण तो नहीं होगा, तो संक्रमण कब होगा, तो अंतिम अनुभव कांडक के होते हुए संक्रमण चल रहा है, उसके बाद संक्रमण नहीं है। तो अभी हमने जो पढ़ा देखो, इसके मैं और पढ़ के बताती हूँ विशेषार्थ में। 174 प्रश्न। तीन वेदों में से किसी भी वेद के उदय से शपक श्रेणी पर जीव चढ़ता है। शपक श्रेणी पर चढ़ने पर अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण होते ही है। ये तो हमने देखा ना, उसको गुणस्थान ही बताया अलग अलग। अधकरण है वो सातवें में ही होता है, अपूर्वकरण आठवां गुणस्थान है और अनिवृत्तिकरण नौवां गुणस्थान है। अनिवृत्तिकरण में चार संज्वलन और नौ कषायों का अंतरकरण करता है, उसमें अंतर पड़ता है, बीच में गैप तैयार होता है। नीचे और ऊपर के निषेकों को छोड़कर, देखो ऐसा क्यों कहा चार संज्वलन और नौ, 13 का ही अंतर क्यों करता है?
8 का तो पहले नाश हो गया,
8 की क्षपणा पहले हो जाती है। हाँ, तो इतनी सत्ता है और उसने अंतर कर दिया। नीचे और ऊपर के निषेकों को छोड़कर बीच के अंतर्मूर्त मात्र निषेकों के अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। अंतरकरण जब तक नहीं करता तब तक तो तीनों में से किसी भी वेद के उदय से शपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव का सब कथन समान ही जानना चाहिए। अंतर के पहले त्रिवेद से चढ़ने वाला हो, पुरुष वेद से या नपुसक वेद से, वो सारे उसके प्रोसेसेस वही है। फर्क कहाँ पड़ता है? जब वेदों की क्षपणा शुरू होती है तो उसमें अंतर पड़ता है। नपुसक वेद से ही चढ़ने वाले के पहले क्या होता है, त्रिवेद से ही चढ़ने वाले को क्या होता है, पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले के क्या होता है। तो अंतरकरण करने के बाद यानी करने पर जो जिस वेद और जिस संज्वलन कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ता है उसकी प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त मात्र स्थापित करके, ये जो अंतर पड़ता है बीच में, उसके नीचे की कहेंगे प्रथम स्थिति और ऊपर की उसको कहेंगे द्वितीय स्थिति। तो जिस वेद का या जिस कषाय का उदय है उसके पहली स्थिति में अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक रचना होगी, अन्य की इतनी नहीं होगी, क्योंकि इसके उदय के समय से लेकर, जिसका उदय चल रहा है ना, उदय से समय से लेकर, अब यहाँ बीच में अंतर कर दिया उसने, ये ऊपर के और ये नीचे के, तो जिसका उदय है वो अंतर्मूर्त प्रमाण उसके निषेक है वहां पर, ये प्रथम स्थिति के निषेक। तो उसकी प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त मात्र स्थापित करके अंतरकरण करता है। जैसे स्त्रीवेद के उदय से श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव स्त्रीवेद की ही प्रथम स्थिति स्थापित करता है, यानी उसके प्रथम स्थिति में स्त्रीवेद की ही रचना होती है, उस प्रथम स्थिति का प्रमाण पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के जितना नपुसक वेद के क्षपण काल सहित स्त्रीवेद का क्षपण काल होता है उतना है। क्या कहना चाहते हैं? ये अंतर्मूर्त यानी कितना बड़ा है, तो जो पुरुष वेद सहित चढ़ता है तो वो क्या करता है, पहले तो ये नपुसक वेद की क्षपणा पूरी करता है, फिर स्त्रीवेद की क्षपणा पूरी करता है, और फिर जाके वो पुरुष वेद का उदय चल रहा है, बाद में वो यहाँ तक उसका उदय भी है, उसका क्षपणे का कार्य चलेगा। तो यहाँ इसका दोनों का मिलकर जो है ना स्त्रीवेद की क्षपणा का जो काल है, इतना प्रमाण, इतना बड़ा अंतर्मूर्त, यहाँ स्त्रीवेद के निषेकों की रचना होती है प्रथम स्थिति में। पुरुष वेद के उदय से श्रेणी पर देखो प्रथम स्थिति का प्रमाण कितना है, अभी स्त्री वेद के प्रथम स्थिति का प्रमाण कितना बता देते हैं, तो जो पुरुष वेद सहित श्रेणी चढ़ता है उसका नपुसक वेद के क्षपण काल सहित स्त्री वेद का क्षपण काल है। ये क्या है उसका, नपुसक वेद सहित स्त्री वेद का क्षपण काल, उसमें वो इंक्लूडेड है, उससे प्लस नहीं करना है अलग से, उसको स्त्री वेद का क्षपण काल भी कह सकते थे, परंतु उसको कह दिया नपुसक वेद सहित स्त्रीवेद का क्षपण काल। ये जो प्रमाण है अंतर्मूर्त का, उतनी यहाँ स्त्रीवेद से चरने वाले की पहली स्थिति में निषेक रचना हुई। पुरुष वेद के उदय से श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव तो पुरुष वेद के उदय से युक्त होता हुआ ही सात नौ कषायों के क्षपण काल में सात नौ कषायों का क्षपण करता है। बाद में एक समय कम दो आवली काल में पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्धों को खपाता है। बाद में हमने कर दिया है, पहले हमने करेक्शन किया है उसको, बाद में, बाद को हुआ था ना, बाद में कर देना। अभी क्या कहना चाहते हैं, जो पुरुष वेद सहित चल रहा है, अब उसके जो उसने तो दो कर्मों को खिपा दिया है स्त्रीवेद नपुसक वेद को, परंतु अभी छह नौ कषा है ना अन्य, उसके उसकी भी क्षपणा चल रही है, तो वो पुरुष वेद को भी और छह नौकशाओं को भी संक्रमित कर रहा है, छिपा रहा है। तो और वो छिपाने के बाद भी यहाँ जो उसका नया बंध हुआ पुरुष वेद का,
समय प्रबद्ध का,
नवक समय प्रबद्ध, वो बाद में जाके छिपाएगा, यानी पुरुष वेद का संक्रमण और अधिक काल तक चलेगा। स्त्रीवेद वाले को ऐसा नहीं होगा, तो स्त्रीवाद वाले का क्या होता है अभी पढ़े, किंतु स्त्रीवेद के उदय से श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव वेद के उदय से रहित होकर ही, देखो फिर से मैं बता रही हूँ, इसमें ये पुरुष वेद से ही चढ़ने वाला जीव है, उसने यहाँ पर स्त्रीवेद की क्षपणा पूरी कर दी, उसके पहले नपुंसक वेद भी छिपाया था
पुरुष वेद,
अभी यहाँ से लेकर क्या कर रहा है
पुरुष
वेद का भी और छह नौकशायों का भी संक्रमण चालू कर दिया उसने ऑलरेडी। पुरुष वेद का उदय होते हुए उसने संक्रमण शुरू कर दिया, परंतु यहाँ संक्रमण पूरा नहीं होता, छह नौकशायों का भले पूरा हो जाए, यहाँ जो नया बंध हुआ है किसका, पुरुष वेद का हुआ है। छह नौकशायों का बंध होने का सवाल नहीं, वो तो आठवें में ही बंध विच्छित हुई है, इसलिए यहाँ जो पुरुष वेद का नया बंध होगा वो दो समय दो का आवली काल तक उसका संक्रमण होते होते वो मिट
जाएगा।
परंतु अभी हम स्त्री वेद के उदय सहित की बात करेंगे, ये स्त्री वेद वाला है, यहीं पर वो अपगत वेदी हो गया, यानी यहाँ पर लास्ट में जो पुरुष वेद का उसने बंध किया था, अब यहाँ ये जो अंतर्मूर्त काल है जहाँ छह नौकशायों की क्षपणा चल रही है
उसके साथ पुरुष वेद,
और सप्ताह में पड़े हुए पुरुष वेद की भी संक्रमण चल रहा है, तो उसका नवक समय प्रबद्ध हो या पूर्व में पड़ा हुआ हो, वो सारा पुरुष वेद और नौकशा एक साथ उसका संक्रमित हो जाता, उसका लंबे काल तक नहीं रहता। तो यहाँ कहते हैं स्त्रीवेद के उदय से श्रेणी चढ़ने वाले जीव के वेद के उदय से रहित होकर, ये जब अपगत वेदी हुआ होकर ही सात नौ कषायों का क्षपण करता है, एक साथ पुरुष वेद और छह नौ कषायों का क्षपणा करता है। अतः पुरुष वेद की प्रथम स्थिति नपुसक वेद स्त्री वेद और छह नौ कषायों का जितना क्षपण काल है उतनी होती है। देखो फिर हमने देखा था अंतर करने पर द्वितीय स्थिति और प्रथम स्थिति होती है, स्त्री वेद की प्रथम स्थिति कितनी होती है, जितने स्त्री वेद की क्षपणा के लिए पुरुष वेदी जीव के काल लगता है उतनी होती है, और पुरुष वेद की प्रथम स्थिति कितनी होगी यहाँ नीचे,
वेद और छह नौकशाय वेद और छह नौकशाय,
तो उसके यहाँ तक जब तक पुरुष वेद का उदय, तो छह कषाय को भी क्षपणा का जो काल है वो भी उसमें इंक्लूड करना, तो इसकी प्रथम स्थिति और लंबी होगी पुरुष वेद से ही चलने वाले। अब आगे क्या कहना चाहते हैं देखेंगे, जो जीव स्त्रीवेद के उदय से श्रेणी पर चढ़ता है वह जब स्त्रीवेद का अंतरकरण करके, ये अंतरकरण किया उसने, स्त्रीवेद में अंतर कर दिया, सवेद भाग के उपांत्य समय में, सवेद भाग का उपांत्य समय ने अभी ये गल गए सब,
दो निषेक पर
ये सवेद का उपांत्य भाग, उपांत्य समय, सवेद भाग के उपांत्य समय में स्त्रीवेद की द्वितीय स्थिति को खपाकर, उसमें क्या किया यहाँ पर, ये खिपाया है ने क्या, यहाँ से डायरेक्ट कैसे, वो संक्रमण से खिपाया, क्षपणा में क्या होता है पुरुष वेद रूप से संक्रमित होता है, तो यहाँ स्त्रीवेद के द्वितीय स्थिति सब उसने संक्रमित कर दी, अब ये उपांत समय में संक्रमित कर दी, अभी अंतिम समय बाकी है उसका, ये उदय का अंतिम समय है पहले स्थिति में, द्वितीय स्थिति में भी स्त्रीवेद के कोई परमाणु नहीं है, बस उसका एक ही निषेक बाकी है, उसके स्त्रीवेद का केवल उदयगत गोपुच्छ अवशेष रहता है, यही उदय रूप है यहाँ पर, तब उसके स्त्रीवेद का जघन्य अनुभाग सत्कर्म होता है।
ये तो कुछ सत्ता की अपेक्षा बात हो गई,
सत्ता है वो उदय रूप है, अभी हम सत्ता की बात पढ़ रहे हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सत्ता की ही बात है, वो एक समय होता है, और संक्रमण में तो पूरा अनुभाग कांडक बताएंगे अंतिम, यहाँ तो एक निषेक की बात है, और यहाँ जो भी हमने पहले देखे तो एक एक निषेक की बात थी वहाँ पर, उसकी बात यहाँ संक्रमण में नहीं करेंगे, पर ये अनुभाग को तो समझेंगे, फिर हम संक्रमण की बात फिर दोबारा देखेंगे। ये तो अंतिम समय में क्या था, बस एक ही निषेक बाकी था, उपांत समय में क्या था, पहली स्थिति में दो निषेक थे और ऊपर का जो अंतिम अनुभाग कांडक जो कुछ संक्रमण होना बाकी था
उसके
वो तो वहाँ पड़ा है, तो वहाँ उसका अनुभाग कितना था, तो कहते अंत समय से पहले समय में उसके स्त्रीवेद के सर्वघाती द्विस्थानिक निषेक रहते हैं। यहाँ पर जो उसके निषेक है वो कैसे, उसमें अनुभाग कितना है, सर्वघाती है, और ये वाला है वो जघन्य बन गया उसका, क्योंकि ये द्वितीय स्थिति वाले वो पहले पूर्व के पड़े हैं, अभी नया जो लास्ट में हुआ है वो भले देशघाती हुआ था परंतु सत्ता में जो पहले पड़ा था वो तो सर्वघाती रूप से
तो बंद तो है ही नहीं ना,
पहले बंदे हुए द्वितीय स्थिति में कहाँ से पड़ा है,
पहले स्थिति में
जो पहले पूर्व से जो चला आया है, जब तक सम्यक तो जिस समय से प्राप्त हुआ है वो सारा पुरुष वेद का ही बंद हो रहा है, परंतु सत्ता में सभी है ना, नपुसक वेद भी है, स्त्रीवेद भी है, सब कुछ था, उसकी बात है यहाँ, परंतु ये सत्ता वाला ही जो अनुभाग यहाँ कम हो गया है,
देश का हो गया है,
लेकिन ये जो देश में नहीं
कन्वर्ट होते हैं, परंतु जब तक पूरे नहीं होते ना, यहाँ सत्ता में है वो, सत्ता में पड़े है, देशघाती रूप होकर जो उदय चल रहा था जो कुछ है वहाँ उदय की और सत्ता की बात अलग होती है। ऊपर द्वितीय स्थिति में वो सर्वघाती रूप से थे ही थे, उदय में आते हुए कन्वर्ट होते, हमने जैसे क्षोभ में परिभाषा देखी थी, उदय समय में केवल वो सर्व देशघाती, इसलिए वो उदय समय में वो देशघाती हुआ है, तब तक वो सर्वघाती रूप से रहते हैं, अतः उसमें जगह ने सत्व नहीं बतलाया। पुरुष वेद को तो हमने देखा था, उसका तो नवक समय प्रबद्ध है, वो बाद में जब जगह ने रूप से ही बंधा है तो जगह ने रूप से वहां रहता है, उसकी बात हमने देखी। अभी हम आते अपने संक्रमण की बात करेंगे, अभी संक्रमण में किसको लिया था, उसका पूरा अंतिम कांडक लिया था उसका, देखो 36 पृष्ठ पर अपने पेज पर आते हैं कि फिर मैं सूत्र पढ़ती हूँ, उसी के अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान, यानी स्त्रीवेद के क्षपणा में अंतिम कांडक में विद्यमान जो जीव है, कौन सा जीव, स्त्रीवेद यानी स्त्रीवेद के उदय से ही चढ़ने वाला क्षपक जीव स्त्रीवेद के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है, क्योंकि परोदय से ये बात नहीं घटित हुई जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, नपुसक वेद के उदय से ही चढ़ने वाले के, पुरुष वेद के उदय से ही चढ़ने वाले के इतना
मिनिमम
नहीं होता उसका। अब हम आते हैं नपुसक वेद की बात पढ़ेंगे, 37 पृष्ठ, नौ से वेदस जहन अनुभाग संकामो को होई नपुंसक नयुंसक हुआ है, नपुंसक वेद के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है, नौ से वेदक खवो वहां खवगो लिखा, खवगो ही चाहिए, खवगो नीचे भी खवगो लिखा है, इतनी वेद खवगो लिखा है, हर जगह इस खवगो ही लिखा है, खवगो नौ से वेद खवगो तस्से व चरिमे अनुभाग खंडये वट्टमानो। नपुसक वेद के उसी के अंतिम अनुभाग कांडक में स्थित नपुसक वेदी क्षपक जी नपुसक वेद के जगन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। यहाँ पर क्षपक का नपुसक वेद विशेषण निरर्थक नहीं है, क्योंकि वो तो उसी के होगा, अन्य के नहीं होगा, श्रीवेद वाले को ये नहीं होगा, क्योंकि स्वोदय से स्वामित्व के विधान करने का फल देखा जाता है। क्या फल है? कि स्वोदय से जब स्वामित्व कहेंगे तभी उसको वो जगन्य घटित होगा। शंका, परोदय से स्वामित्व का निर्देश क्यों नहीं करते हैं? प्रश्न करो इसको, प्रश्न चिन्ह कि नपुसक वेद के जगन्य पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले को कहो ना। देखो अभी जो नपुसक वेद सही चढ़ता है ना, पुरुष वेद या स्त्री वेद सही चढ़ता है तो नपुसक वेद की क्षपणा यहीं पर पूरी होती है, परंतु जो नपुसक वेद सही चढ़ता है उसकी यहाँ क्षपणा यहाँ तक चलती है। एक समय पहले स्त्री वेद कम्प्लीट हो जाता है, एक समय के लिए नपुसक वेद बाकी रहता है। तो यहाँ पर करने में और यहाँ पर करने में अनुभाग इसका इतना घटेगा ना उसमें, इसलिए जो अन्य वेद सहित नपुसक वेद की क्षपणा करता है तो वहां उसका जो अनुभाग है उससे यह अनुभाग और जघन्य हो जाता है। इसलिए नपुसक वेद के उदय सहित ही चढ़ने वाला जीव लेना है। हाँ, उसके श्री वेद और नपुसक वेद की समान एक समय पहले उसकी पूरी हो जाती है, पुरुष वेद के समान नहीं है। स्त्री वेद वाला क्या करता है समझो, उसके आधे काल में पहले नपुसक वेद की पूरी करता है, बाद में अकेले स्त्री वेद की करता है। नपुसक वेद की क्षपणा करने वाला क्या होता है, पहले नपुसक वेद की क्षपणा शुरू हुई है परंतु यह मिटी नहीं, यहाँ से स्त्री वेद की क्षपणा और नपुसक वेद की एट अ टाइम चालू हो गई, और दोनों की स्त्री वेद की पहले रुकती है और एक समय बाद नपुसक वेद की रुकती है।
यहाँ पे उदय कोई भी काल कितना भी काल तक चलता है, वो कांडक घाट जो होता है वो अनुपा कांडक घाट जो उसका समय है वो भी अंतर्मूर्त प्रमाण है।
सभी का काल अंतर्मूर्त कहेंगे, उदय भी अंतर्मूर्त, परंतु वो अंतर्मूर्त छोटे बड़े हैं ना बहुत सारे।
अच्छा, वहाँ पे
अनुभाग कांडक का अंतर्मूर्त अत्यंत छोटा है, क्योंकि जहाँ स्थिति का एक कांडक होता है वहाँ अनुभाग के हजारों कांडक होते हैं।
अच्छा, अनुभाग कांडक
तो उसका कितना छोटा होगा काल। हाँ, नपुसक वेद की बात अलग है, स्त्री वेद पुरुष वेद के लिए चढ़ने वाले का। हाँ, तभी वो नपुसक वेद का जघन्य होगा नहीं, उसका पॉइंट एक ही है, नपुसक वेद का क्षपणा का काल उतना ही है। समान स्त्री वेद की क्षपणा का काल या नपुसक वेद की क्षपणा का काल अनुभाग नहीं, अनुभाग उतना नहीं होगा, वो अनुभाग ज्यादा होगा नहीं होगा, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो बता देते ना। श्री वेद में भी बताया कि परोदय से स्वामित्व का विधान करने में कोई विरोध नहीं आता है, ऐसी शंका करना ठीक नहीं है।
स्वोदय से बताना पड़ेगा ना,
स्वोदय से ही होता है, लिख दिया ना, स्पष्ट रूप से लिख दिया,
उसपे भी लिखते हैं।
देखो यहाँ शंका पूछी थी, परोदय से स्वामित्व का निर्देश क्यों नहीं करते है? तो समाधान, परोदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव पहले ही नपुसक वेद का नाश कर देता है, इसलिए उसके जघन्यपना नहीं बन सकता। अब आगे का सूत्र, छ नो कसायाणम जहन्न अनुभाग संकामो को होई। देखो जो जल्दी मिट जाता है उसका वहाँ पर अनुभाग ज्यादा है, जो लंबे काल तक चलता है ऊपर तक तो उसके और अनुभाग घट गया वहाँ तक जाते जाते, इसलिए उसका जघन्य उस पॉइंट पर होगा।
परिणामों की तो समानता है, पर ये जल्दी हो जाता है इसीलिए
परिणाम की समानता उस पॉइंट पर है। हाँ, ये नपुंसक वेद की भी क्षपणा ये क्षय कर रहा है, उसके भी उस पॉइंट पर अगर बात करेंगे
तो
उसका
यहाँ
पर समान था, परंतु ऊपर जाके उसने क्षपणा पूर्ण
तो उसका जघन्य,
इसलिए उसका जघन्य होता है। और अंतर्मूल तो ऊपर चढ़ा ना वो उतने काल में, और उसका जघन्य हो गया। छह नौकशांक के जघन्य अनुवाद संक्रम का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। खवगो तेसिम छेव छन नौकसाय वेदनीयानम चरिमे अनुभाग खंडये वर्तमानो। उन्हीं छह नौकसाय वेदनीय के अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान। पूरा कांडक का समय लिया, स्त्रीवेद के लिए भी, नपुसक वेद के लिए भी और यहाँ भी। ऐसा क्षपक जी उनके जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। यहाँ अंतिम अनुभाग कांडक में सर्वत्र जघन्य अनुभाग संक्रम अवस्थित रूप से प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं इसका अर्थ समझ में आता है? अंतिम अनुभाग कांडक होने के लिए अंतर्मूर्त लगेगा, तो पूरा अंतिम अनुभाग कांडक में वो जघन्य अनुभाग संक्रम उतना का उतना रहता है हर समय। अवस्थित रहता है का अर्थ क्या है? उतना का उतना रहता है। इसलिए उसमें जघन्य स्वामित्व दिया है। ये तो संक्रमण की बात है। क्या कहना चाहते हैं? देखो अभी हम स्पर्धकों की बात ले रहे हैं। ये स्पर्धक कितने थे जो उसके पहले पहले कांडक हुए थे? मान लेते इतने का कांडक हुआ तो पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, अंतिम समय में क्या हुआ? अनुभाग कांडक का पतन हुआ अंतिम समय में। अभी जब हम अंतिम अनुभाग कांडक की बात कर रहे हैं, अंतिम अनुभाग कांडक की बात करते हैं, तो इसके पहले पहले, दूसरी फाली, तीसरी फाली, चौथी फाली अनुभाग तो जो टॉप मोस्ट है उसी को हम अनुभाग का कहेंगे संक्रमण। तो जब तक एक एक फाली तो अनुभाग उतना 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 संक्रमण की बात चल रही है। अंतिम फाली में भी अनुभाग तो उतना ही था। अब क्या हुआ? ये सारा अंतर्मूर्त तक उतने का उतना अनुभाग संक्रमण चला। बाद में क्या हुआ? प्रथम स्थिति वाले निषेकों में वो आया, अभी अनुभाग संक्रमण रुक गया। ये स्थिति विभक्ति के समय एक एक समय की बात अभी नहीं करेंगे। संक्रमण तो यही था लास्ट में, अंतिम कांडक ही अंतिम संक्रमण था। तो थ्रू आउट अंतिम कांडक घात में उसका अनुभाग उतना का उतना रहा। स्थिति में क्या कहते थे? एक एक समय नीचे से गलता था, इसलिए उसमें स्थिति में वेरिएशन पड़ता था। कांडक में भी एक एक समय कम होता था, यहाँ वो कोई सवाल नहीं है। इसलिए पूरे कांडक का अंतर्मुहूर्त तक उतना का उतना जघन्य रहेगा। अंतिम कांडक जघन्य देख रहे ना, अजघन्य तो पहले थे, उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे हम।
यहाँ पे ये जो सूत्र में नौ कषाय वेदनीय के बताया ना, तो यहाँ पे तो आठवें गुण स्थान में उदय की विच्छुति है, तो यहाँ पे वेदनीय क्यों कहा?
उसका नाम ही वेदनीय, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। मोनिय का दूसरा नाम है कषाय, उनको कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। कहीं कहीं उसको आवरण भी कहते हैं। आवरण भी आता ना, आवरण कहते उसको। कषाय वेदनीय, नौ कषाय वेदनीय उसका नाम ही है। नौ कषाय वेदक नहीं कहा, वेदनीय कहा, वेदक नहीं कहा। जैसे क्रोध में क्रोध वेदक कहा था, इसको नौ कषाय वेदक नहीं कहा है, वेदनीय उसका नाम है।
अच्छा, मेरा कंफ्यूजन।
कषाय का वेदन करने वाला वो कषाय वेदनीय, उसी का दूसरा नाम है मोहनीय,
चारित्र मोहनीय,
नौ कषाय कर्म कहेंगे हम उसको। हाँ, तो वहां पर भी नौ कषाय में भी अंतिम कांडक लेना पूरा कांडक का समय
उतने
का। नीचे के हम पढ़ रहे, यहाँ अंतिम अनुभाग कांडक में सर्वत्र जघन्य अनुभाग संक्रम अवस्थित रूप से प्राप्त होता है, यानी उतना का उतना पूरे कांडक का जो अंतर्मूर्त है, इसलिए उसमें जघन्य स्वामित्व दिया है। यह अर्थ नपुसक वेद और स्त्रीवेद विषयक स्वामित्व संबंधी सूत्रों में भी लगा लेना चाहिए। अभी हमने जो देखा था स्त्रीवेद का,
वो भी अंतिम कांडक का पूरा,
अंतिम कांडक में विद्यमान जीव लिया, और यहाँ पर भी नपुसक वेद में भी अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान जीव। तो अंतिम अनुभाग कांडक के जितने समय है अंतर्मूर्त के, वो थ्रू आउट उसका जघन्य ही रहेगा, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। इस प्रकार ओव से जगन्य स्वामित्व समाप्त हुआ। कुछ ख्याल में आई बात? देखो मिथ्यात्व और आठ कषा में सूक्ष्म लभ्य पर्याप्त को लिया जगन्य के स्वामित्व में,
बाकी सपना में लिया।
फिर सम्यक्त्व का जगन्य स्वामित्व सपना में एक समय पर सावली बाकी रहा, तब
सम्यक मिथ्यात्व
में जगन्य
अनुवाद कांडक,
अनुभाग कांडक का अंतिम समय,
अंतिम अनुभाग,
अंतिम अनुभाग कांडक लिया वहाँ पर, क्योंकि उसका भी वैसा ही रहेगा उतना का उतना।
अनंतानुबंधी
का संयोजना होने पर
एक अवली
पश्चात,
बाकी सब
कौन रह गया? संज्वलन और वेद रह गया।
नौ नौ करते
तो क्रोध संज्वलन में हमने क्या देखा था? उसका नवा समय प्रबुद्ध था,
नवा समय
उसका जो अंतिम क्षपणा का समय है, तब उसका जघन्य अनुभाग पाया जाता है।
मान के दो
मान का भी माया का भी ऐसा ही, लोभ में
एक समय एक
आवली प्लस, एक समय प्लस आवली बाकी रहा तब की बात। संज्वलन लोग पुरुष वेद स्त्री वेद और नपुसक वेद में अपने अपने उदय से चढ़ने वाले के, अभी पुरुष वेद में तो ऐसा है ना, उसका जो नवक समय बंद
है वो दो,
उसका जब दो समय कम दो आवली की बात होता है,
और इसका लास्ट अनुभाग कांड,
और यहाँ पर अंतिम अनुभाग कांड के लिए छह नौ कषाय में भी उसका अंतिम अनुभाग कांड के लिए ये ओग से जघन्य देखा। अब आते हैं 38 पृष्ठ पर। बहुत भारी हो गया क्या?
नहीं
थोड़ा सा भारी होगा। अनुभव बढ़ रहा है नींद का। इसलिए आज पूरा रिपीट लिया थोड़ा। अब आदेश से आप कहेंगे रिपीट नहीं करेंगे तो जल्दी समाप्त होगा क्या? आदेश से नारकियों में अनुभाग विभक्ति के समान बन गए। अब वो नारकियों के अनुभाग विभक्ति देखनी पड़ेगी, तो नारकियों में जगन्य किसके होगा अनुभाग?
असंगी से आया हुए को,
जो असंगी से आया हुआ। इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओग के समान है, क्योंकि सम्यक्त में भी वो कृतकृत्य वेदक से आया हुआ जीव ले सकते हैं, अनंतानुबंधी के तो विसंयोजना के बाद संयोजना यहाँ भी होती है अवली के बाद। अब यहाँ अनुभाग विभक्ति के समान जो कहा है, जरा देख लेंगे मिलेगा तो। अभी कहाँ तक थे हम?
172
ना, उसके आगे आदेश से होगा। देखो नरक गति में 175 पृष्ठ है, ने पांचवी पुस्तक तभी समझी कि नहीं समझी, अभी जरा समझ रहे हैं। एक साथ चेंज है। हाँ देखो अभी वहां हम पढ़ेंगे। तो वहां नरक गति में मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अभी आदेश में गतियों में हम लगा रहे हैं। तो कहते हत समुत्पत्ति कर्म के साथ जो असंगी आकर नारकी हुआ है उसके होता है, यानी जो असंगी के योग्य उसने घात किया,
जगन्य किया है,
उसके योग्य जगन्य किया है और यहाँ आ गया। ऐसा भी हो सकता है ना असंगी में। 175 में लास्ट अंतिम पुस्तक पांचवी नीचे का सूत्र मैंने पढ़ा, तो उस पर उसने शंकाकार ने पूछा था कि हत समुत्पत्ति कब करता है? विशुद्धि ज्यादा है तो करेगा, तो ऐसा जो ज्यादा विशुद्ध है तो नरक में क्यों जन्मेगा, ये उसका प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तो उसका समाधान करते हैं कि जिसने पहले नरकायु का बंध किया हो और फिर वो जीव क्रम से कभी संक्लेश कभी विशुद्धि करते हुए, यानी संक्लेश से विशुद्धि में विशुद्धि से संक्लेश में, ये तो परिवर्तन चलता रहता है, कोई भी एक जीव सदाकाल विशुद्धि में सदाकाल संक्लेश में नहीं रहता। तो विशुद्धि काल के क्षीण हो जाने पर तद प्रायोग्य संक्लेशवश अनुभाग बंध में वृद्धि हुए बिना मर गया। जो अनुभाग बंध किया था उसने अभी वृद्धि नहीं हुई है और मर गया, उसके ये बात हो सकती है। तो वहां फिर प्रश्न पूछा था कि सबसे विशुद्ध और जघन्य अनुभाग सत्कर्म की सत्ता वाले संगी पंचेंद्रियों को क्यों नहीं उत्पन्न कराया नरक में? असंगी में इतना जघन्य हो सकता है तो इसमें भी हो सकते हैं ना, क्योंकि संगी की विशुद्धि और ज्यादा है। देखो पहले हमने जो देखी थी असंगी से उसकी ज्यादा होगी,
असंगी के संगी।
हाँ, तो कहते उसको क्यों नहीं लिया? तो कहते संगी मिथ्या दृष्टि के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा असंगी का जघन्य अनुभाग अनंत गुणाहीन है। असंगी के जघन्य से संगी का जघन्य अनंत गुणा है अनुभाग। तो कहते कैसे जाना? तो यहाँ तो कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले सम्यक दृष्टि के नरक में ये जघन्य अनुभाग नहीं बताया है, परंतु असंगी में से आए हुए के बतलाया है। इसी से ये बात सिद्ध होती है कि असंगी में ही ये जघन्य में जघन्य पाया जाता है। देखो एक बात यहाँ और बताइए, हत समुत्पत्ति कर्म वाला जीव विशुद्ध ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है? जो घात कर रहे हैं अनुभाग का उसके विशुद्धि होने चाहिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने जघन्य अनुभाग सत्कर्म से कम बांधने वाला संक्लिष्ट जीव के भी हत्य समुत्पत्ति कर्म हो सकता है। क्या करना चाहते हैं? जो कोई सत्ता में अनुभाग पड़ा है, ये सत्ता में अनुभाग यहाँ तक पड़ा है, अब ये जीव यहाँ का इतना का ही बंद कर रहा है, तो इतने का बंद कर रहा है तो क्या होगा? ये जो क्रम से ये सारा कम होते चला जाता है, अनुभाग कम होते चला जाएगा क्रम से, एक समय में तो नहीं घटेगा, फिर भी वो हत समुत्पत्ति होगा। और ये कम बंद उसने संक्लेश के द्वारा भी हो सकता है उसको, यानी मात्र विशुद्धि से उसका इतना घात होगा ये बात नहीं है, तो अन्य संक्लेश से भी इसके घात हो सकता है। तो कहते जब तक सत्कर्म से कम बांधता है तब तक ऐसा क्यों नहीं कहा, ये प्रश्न पूछा था। तो कहते जघन्य अनुभाग सत्कर्म के साथ जीव नारकियों में अंतर्मूर्त काल तक रहता है ये बता रहे थे, इसका फिर दोबारा विशेषार्थ बता रहे हैं, हम पढ़ेंगे इसको। जो असंगी पंचेंद्रिय पहले नरकायु का बंद करके पीछे सत्ता में स्थित मिथ्यात्व के अनुभाग का घात कर डालता है सत्ता में, क्योंकि अभी जघन्य बांध रहा है वो और सत्ता में जो था उसका घात कर रहा है, और वह जब मरकर नरक में जन्म लेता है तो उसके मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म तब तक होता है जब तक वह मिथ्यात्व के सत्ता में स्थित अनुभाग से अधिक अनुभाग का बंधन नहीं करता। ये जो अभी वह नारकी अपर्याप्त जीव है वह असंगी का जो सत्ता में स्थित अनुभाग है उससे अधिक बंध करेगा तो उसका अधिक हो जाएगा। अतः नरक में मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग की सत्ता अंतर्मूर्त काल तक ही रहती है, ये अंतर्मूर्त काल की बात।
ये अंतर्मूर्त क्यों बताया? पहले समय में वो असंगी के जैसा करता है, दूसरे समय से सभी पर्याप्ति के काल से वो अंत कोड़ा कोड़ी करता है।
तो आप स्थिति की बात देख रहे हैं, यहाँ अनुभाग की बात हो रही है। स्थिति में तो हमने आते ही नया बंध उसने शुरू किया था, वो सत्व बढ़ जाता है वहां पर। अंतर्मूर्त तक वो तो सत्ता से जितना सत्ता है उतना बंद करेगा, ज्यादा नहीं बंद करेगा, अंतर्मूर्त लिमिट है उसकी। अनुभाग की बात देखो उसमें फिर एक शंका है कि सत्ता में स्थित अनुभाग का घात विशुद्ध परिणाम से होता है और विशुद्ध परिणाम वाला मर्क नरक में कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो उसका समाधान यह किया गया है कि पहले उसने नरकायु की बांधी थी आयु, और जब भुज्यमान आयु समाप्त हो गई यानी मर गया तो योग्य संकलेश परिणामों से मरकर नरक में जन्म लेता है, किंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि उसके संकलेश परिणाम ऐसे नहीं होते जिनसे सत्ता में स्थित मिथ्यात्व के अनुभाग से अधिक अनुभाग बंद हो। सत्ता में है उससे कम ही बंद रहा है, क्योंकि हमने देखा घात से जो बंधता है वो जघन्य से भी बहुत ऊपर वाला है उसकी पोजीशन, तो संकलेश से इन बिटवीन उसका बंद होगा, जो सत्ता में उसे कम ही बंधेगा। दूसरी शंका क्या थी कि असंगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के परिणाम अधिक विशुद्ध होते हैं, अतः उससे उसके जघन्य अनुभाग सत्कर्म अधिक हीन हो गए, इसलिए सैनी मिथ्या दृष्टि को नरक में उत्पन्न क्यों नहीं किया। सो इसका समाधान है कि संगी मिथ्या दृष्टि के जघन्य अनुभाग सत्कर्म से असंगी पंचेंद्रिय का जघन्य अनुभाग सत्कर्म अनंत गुणाहीन होता है, और इसका सबूत ये है कि जो सूत्र में बताया, सूत्र में अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद संयोजना वाला जीव नहीं लिया विशुद्धि में, परंतु असंगी में से आया हुआ जीव लिया, इसलिए सिद्ध होता है कि संगी मिथ्या दृष्टि से असंगी पंचेंद्रिय का जघन्य अनुभाग सत्कर्म अनंत गुणाहीन होता है। ये भी हमने पढ़ लिया आदेश से। अब यहाँ देखते हैं अपने पृष्ठ पर, 38 पृष्ठ पर आना। आदेश से नारकियों में अनुभाग विभक्ति के समान बन गए। अभी देखा ना हमने केवल मिथ्यात्व की बात, वहां तो अन्य केशवों की भी ऐसे ही समझना ऐसा लिखा है उन्होंने, असंगी में से आया हुआ। अभी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी में कुछ डिफरेंट, सम्यक तो नहीं, सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में जब तक सत्व है उत्कृष्ट ही होगा, उसकी उद्वेलना में भी जघन्य तो होता ही नहीं है। सम्यक तो में कृतकृत्य वेदक में वो जघन्य होगा, अनंतानुबंधी के संयोजना में जघन्य होगा, और बाकी सब असंगी में से आए हुए के जघन्य होगा। इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओग के समान है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, क्योंकि वो जगन्य वाला जो असंगी से आया हुआ कहाँ आएगा, तो पहली पृथ्वी में, तो पहली पृथ्वी में तो समानता है। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि उनमें अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओग के समान है, वही संयोजना करने वाला जीव लेना। देखो अभी हम पहली पृथ्वी में तो हमने देखा क्या देखा,
असंगी से आया,
हाँ, असंगी से आया। अब दूसरी पृथ्वी से जो लेना है कि दूसरी पृथ्वी समान, ये आगे 180 पृष्ठ पर देखना, उच्चारण में बताया है। नीचे इसी प्रकार पहली पृथ्वी वगैरह बताए ना,
ये तो
नीचे से दूसरी लाइन, दूसरी से लेकर उत्कृष्ट का है क्या,
हाँ ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट
जगन्य का प्रकरण आगे,
हाँ जगन्य का नेक्स्ट पेज
है वो 183 पर है, 183 उसमें ऊपर से 3, 3, 6, 7 लाइन। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का जघन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है, जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है, ऐसे समय दृष्टि के होता है। क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना में कांडक घात हो गए, अनुभाग कांडक घात भी हो गए, अन्य कर्मों में भी होते हैं। अनंतानुबंधी की तो सत्ता नष्ट होती है, उसमें तो कांडक घात स्थिति कांडक घात वगैरह होते ही होते हैं, परंतु अन्य कर्मों में भी होते हैं, तो वहां उस जीव को ले लेना है। और अनंतानुबंधी का जगाने किसको होता है? वो विसर्जना वाले को नहीं होते, वो तो संयोजना करने वाले। अन्य कर्मों का विसर्जना वाले के होता है, और अनंतानुबंधी का विसर्जना के बाद संयोजना करने वाले को। वहां देखो 183 पृष्ठ पर पहले पैराग्राफ के लास्ट 4-5 लाइन वहां लिखा था, दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का जघन्य अनुभाग सत्कर्म। वहां तो सत्ता की बात की, किसके होता है? जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है, ऐसे अन्यतर सम्यक दृष्टि के होते हैं, होता है। विसंयोजना की है तो कौन से पॉइंट लेना, उसका उतना ही रहेगा ना अनुभाग, बाद में तो कुछ कम होने का सवाल नहीं है। अधिक तो बंधेगा नहीं, कम बंधेगा तो भी जितना है कांड घात के बिना नष्ट होगा नहीं, तो थ्रू आउट उसका उतना ही रहेगा। विसंयोजना के बाद उसका जघन्य है बस। और अनंतानुबंधी का जघन्य किसके होता है? तो विसंयोजना के बाद संयोजना करने वाले के पहले समय में, ये अभिविभक्ति की बात है इसलिए पहले समय में, और संक्रमण में एक आवली काल के बाद की। यहाँ भी संक्रमण में विभक्ति के समान, जो दूसरी से सातवें नरक में एक बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है तो उसके अनुभाग जितना हुआ है अभी थ्रू आउट उतना ही रहेगा।
ये दूसरी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जगन होगा ही नहीं, वो उत्कृष्ट ही रहेगा।
बिल्कुल उत्कृष्ट ही रहेगा, सम्यक्त्व का भी और सम्यक मिथ्यात्व का भी, क्योंकि वहाँ क्षपणा का कार्य होता नहीं है। पहली पृथ्वी में तो लिया, क्योंकि कृतकृत्य वेदक अवस्था में एक एक समय का अपवर्तन चल रहा है, वहाँ तो संक्रमण वाले को भी लिया है।
सम्यक मिथ्यात्व का नहीं, खाली सम्यक्त्व।
सम्यक मिथ्यात्व का ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मनुष्य में करके आया है, उसकी सत्ता ही नहीं है वहाँ पर। और जो सत्ता वाले हैं, भले वो सम्यक दृष्टि हो, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले कुछ भी हो, सम्यक मिथ्यात्व का तो उत्कृष्ट ही रहेगा दोनों का।
हाँ, यहाँ पे लिखा है चौथी लाइन में, सम्य मिथ्यात्व का जघन्य सत्कर्म नरक में नहीं होता है।
नरक में होता ही नहीं जघन्य, वो थ्रू आउट उत्कृष्ट ही रहेगा, उसका अनुत्कृष्ट भी नहीं होगा। अभी 38 पृष्ठ पर 9वीं पुस्तक में वापस लौटते, इधर उधर चल रहा है अपना। तो अभी हमने पढ़ा था, दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है उनमें अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है, जो सर्वत्र होता है। अनंतानुबंधी के लिए चारों गतियों में समान, क्या संयोजना करने पर एक समय अवधि के बाद। तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। ये द्विक में क्यों कहा?
पर्याप्त और क्यों नहीं,
द्विक को अलग क्यों? हाँ, किसको छोड़ा?
अपर्याप्त को छोड़ा, नहीं नहीं, योनि को छोड़ा।
क्यों? सम्यक प्रकृति का उसमें जगन्य नहीं होगा, क्योंकि क्षपणा करने वाले कृतकृत्य वेदक योनि में उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए उसको छोड़ा है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओह के समान है। यानी सम्यक्त्व का कब है? तो क्षपणा में जो कृतकृत्य वेदक रूप से वहां जन्मा है, तो एक समय और आवली बाकी है तब उसका जगन्य है। इसी प्रकार योनिनी तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है उनमें सम्यक्त्व का जगन्य अनुभाग संक्रम नहीं है, तो उनमें जो कुछ होगा तो उत्कृष्ट ही होगा। ये ख्याल में आई बात मंजू बेन? योनिनी में वो क्षायिक समय दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए उसमें सम्यक्त्व का जगन्य हो नहीं सकता, तो सम्यक्त्व भी और सम्यक मिथ्यात्व भी उत्कृष्ट ही रहेंगे उसके। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अभी इसमें कोई जो जगन्य लेकर आया है एकेंद्रियों में से भी आ सकता है, तो उसके जगन्य होगा। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का थ्रू आउट उत्कृष्ट ही रहेगा। अनंतानुबंधी के लिए भी अभी एकेंद्रिय वाला जो है, हाँ, उसके लिए वो जगन्य कहलाएगा। मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता है, उनमें मिथ्यात्व और आठ कषायों का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है।
एक इंद्रिय से आया हुआ,
एक इंद्रिय से ही आया हुआ लेना है। तथा मनुष्यनियों में पुरुष वेद का भंग छह नौ कषायों के समान है। छह नौ कषायों में हमने देखा ना, अंतिम उसका कांड घात होता है तब होता है, वैसे यहाँ पर भी होगा। देवों में नारकियों के समान भंग है। इसी प्रकार भवनवासी और व्यंतर देवों में जानना चाहिए, क्योंकि ये असंगी मरकर इन दोनों में उत्पन्न होते हैं, ज्योतिषी में ऊपर नहीं होते। इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग संक्रम नहीं है, नरकों में है परंतु इनमें नहीं है। ज्योतिषियों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है, क्योंकि यहाँ भी वो सम्यक दृष्टि नहीं उत्पन्न होते हैं, विषयोजना वाले हो गए। सौधर्म कल्प से लेकर नव ग्रवेक तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है, उनमें सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी का भंग ओघ के समान है, क्योंकि वहां भी कृतकृत्य वेदक भी है और अनंतानुबंधी की विषयोजना वाले भी हैं। आगे के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है, उनमें सम्यक्त्व का भंग ओघ के समान है। अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, उनमें क्या विशेषता होती है? अनंतानुबंधी की विसर्जना के काल में अन्य कर्मों का अनुभाग घट जाएगा। उनमें अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है? अभी इनमें कौन सा होगा? अनंतानुबंधी के लिए संयोजना तो नहीं होती है, अब विसर्जना के अंतिम कांडक में जो अनंतानुबंधी चतुष्क की विसर्जना करने वाला जीव अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान है, वह उनके जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। क्यों? वहां तो कोई सारे समय दृष्टि है ना, विसर्जना तो कर सकते, संयोजना कोई नहीं करेगा, इसलिए विसर्जना में जो कुछ जघन्य हुआ है लास्ट कांडक में उतना है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, इसका विशेषार्थ कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो। दोषी सन
नमो यंत्रणम नमो सुदारम नमो आयरणम नमो उज्जानम नमो लेचुत्रणम नमो यंत्रणम नमो सुदारम नमो आयरणम नमो उज्जानम नमो लेचुत्रणम नमो यंत्रणम नमो सुदारम नमो आयरणम नमो उज्जानम नमो लेचुत्रणम।